समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लगभग 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया ये विचार युवा शक्ति को आज भी प्रेरित कर रहा है और सदियों सदियों तक करता रहेगा। जिस महापुरुष ने ये विचार दिया आज उनकी जयंती है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने युवा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। ऊर्जा से भरे इन्हीं विचारों के साथ स्वागत आप सभी का न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में। आज के संघ के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
हेलो देयर देवेंद्र, अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल यू लवली पीपल ट्यून इन टू हियर आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो गेट रेडी, गेट सेट एज वी बिगिन दिस सेशन विद सम न्यूज हेडलाइंस।
जी, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को करावल नगर से, हरीश खुराना को मोती नगर से और हाल ही में आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुई प्रियंका गौतम को कोंडली से टिकट दिया गया है। इससे पहले पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। कुल 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने अब तक 58 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
Prime Minister Narendra Modi will participate in the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2025 at the Bharat Mandapam in New Delhi on the occasion of National Youth Day today. The Prime Minister will also participate in multiple activities designed to inspire, motivate and empower the nation's future leaders. Our correspondent reports that Mr. Modi will engage with 3,000 dynamic young leaders from across the country. Earlier yesterday, the Prime Minister emphasized that the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue is a unique initiative to involve the country's youth in nation's development journey. He said the program seeks to channel the energy, creativity and leadership of young minds to realize the vision of a Viksit Bharat. Mr. Modi also shared an article written by the Minister of State for Youth Affairs and Sports, Raksha Khatse, on the National Youth Festival 2025 and the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue.
जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर के नगर निगमों सहित स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी को अपनी ताकत का आकलन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय लिया गया है कि पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से नगर निगमों, जिला परिषदों और नगर पंचायतों में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए।
India has joined the UN Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics. As part of the committee, India will contribute to shaping global standards and practices in harnessing big data and data science for official statistical purposes. In a statement, the Minister of Statistics said that India's inclusion in the Committee of Experts represents a significant leap forward for the country's statistical ecosystem. The ministry mentioned that the country's active engagement in the Committee of Experts will highlight its pioneering initiatives, including the establishment of the Data Innovation Lab and exploration of alternate data sources. The UN Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics was created to further investigate the benefits and challenges of big data, including the potential for monitoring and reporting on the Sustainable Development Goals.
जी, पहला अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन आज से देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देना और प्रवासियों के अनुभवों का लाभ उठाना है। इसमें 17 देशों के भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड में निवेश के अवसर, आतिथ्य और स्वास्थ्य, कौशल विकास, विदेशों में रोजगार, उच्च शिक्षा, बागवानी और जड़ी बूटियों की संभावनाओं पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस आयोजन से राज्य में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। और अब आपको ले चलते हैं कुंभ नगरी। श्रोताओं, प्रयागराज में कल पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का शुभारंभ होगा। इस भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर घने जंगल विकसित कर अनूठे प्रयास किए गए हैं ताकि महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध हवा और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
Sports news now. In the men's hockey India League, the UP Rudras defeated Delhi SG Pipers 3-1 at the Birsa Munda Hockey Stadium in Rourkela last night. Goals by Flores Wurtelbohr, Ken Russell and Tanguy Cousins helped UP Rudras back 3 points and climb to number 2 on the points table. We have a report.
Hockey India League is in full swing and yesterday saw an action-packed day in Rourkela at the Birsa Munda Hockey Stadium. The Hyderabad Tufans faced the might of the Surma Hockey Club in the first encounter of a doubleheader. It was a match that literally went down to the wire and the teams could not be separated at full time with the score deadlocked at 1-1. Surma took the lead through a penalty corner brilliantly won and converted by Nicolas De La Torre in the 8th minute. The Tufans roared back into the game but missed a series of gilt-edged opportunities before finally equalizing through a penalty corner of their own, converted deftly by young gun Amandeep Lakhra. Both keepers Vanasht of Surma and Dixon of the Tufans were in top form early on in the shootout, but in sudden death, Zachary Wallace converted with panache, while Nicholas Poncelet was narrowly thwarted by Dixon as the Tufans picked up a crucial bonus point.
Hyderabad Tufans, dusri bar, shootout mein jeete hain.
The later match of the day saw the embattled Delhi SG Pipers squaring up against neighbours UP Rudras. This was an end-to-end battle that saw both sides push for circle penetrations and penalty corners. The deadlock was broken in the 29th minute when Jake Wetton dribbled past two defenders brilliantly and then scored with a reverse hit to put Delhi one up. UP hit back immediately as Floris Wurtelbohr won the ball back in the opposing ranks and then marauded to the goal line before scooping it over the goalie with aplomb. Thereafter, Delhi struggled to convert their chances while UP did so with class. Two finely taken drag flicks in the 43rd and 54th minute gave UP a deserved 3-1 win to keep Delhi winless and mount the pressure on coach Reid. Today, the Vedanta Kalinga Lancers will take on the Hyderabad Tufans. Meanwhile, in what is a historic day, the women's HIL will also commence with a match between the Delhi SG Pipers and the Odisha Warriors. This is Sharia Chaudhary reporting for Akashvani News.
तो ये थीं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें और खेल खबरें। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महानगरों से जुड़ी खबरों की। तो सुभद्रा, आपके पास चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से क्या खबरें हैं?
यस देवेंद्र, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द तमिलनाडु गवर्नमेंट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू एनालाइज सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अकॉर्डिंग टू स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर तंगम ते नरसु, द स्टेट गवर्नमेंट वुड मेक एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट द पेंशन स्कीम अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। ही सेड दैट द गाइडेंस ऑन डिटेल्ड प्रोसीजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन हैव नॉट येट बीन रिलीज्ड। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन ऑगस्ट लास्ट ईयर, assuring a pension of 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months ahead of superannuation. The Tamil Nadu government has dismissed the claim that it had asked for dropping the Madurai-Tuticorin railway project. The State Transport Minister S.S. Shivashankar said that the project requires 926 acres of land and the district collectors of Madurai, Virudunagar and Tuticorin have been instructed to proceed with the acquisition in two phases. He said on 12th of December last year, Tamil Nadu had requested a report on the project status and funding. The railways had confirmed that 18 kilometres of work had been completed, but the remaining sections were shelved, citing a low freight portal. Bengaluru News Now. The gaming unicorn Games 24/7 has shortlisted 17 promising startups for its Tech Expedite Accelerator program that was launched in Bengaluru in October last year. Among the selected startups, six are from Karnataka. Tech Expedite Accelerator program is dedicated to nurture the next generation of startups that create meaningful change through advanced and inclusive technologies. It is designed to drive innovation in gaming, artificial intelligence, and inclusive technology. These select startups will participate in a structured mentorship program and interact with industry leaders, venture capitalists, and domain experts to address challenges and refine their products and solutions. They will receive credits worth $5 lakh from more than 30 technology partners. Tech Expedite Accelerator program is supported by the Government of Karnataka, Telangana, Maharashtra and the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India. Hyderabad News Now. The Telangana Tourism Department will be organizing the annual International Kite and Sweet Festival from tomorrow till the 15th of this month at Parade Ground in Secunderabad. The event will feature regional arts and crafts and food items, both from Telangana and other states and by foreign families, alongside events by national and international kite flyers. State Tourism Minister J. Krishna Rao revealed the details yesterday in Hyderabad. He said about 15 international kite flyers from 19 countries and 15 national kite flyers from 14 states will display a variety of kites. He said on the eve of the Makar Sankranti, the state is hosting the International Kite and Sweet Festival, where thousands of visitors will enjoy colourful kites and delicious sweets. The minister added that visitors will also enjoy cultural programs showcasing the traditions of different states. Tourism Secretary Smita Sabharwal said the Kite and Sweet Festival will have all the sweet varieties from Uttarakhand to Kerala in one place. The festival will showcase over dozens of varieties of sweets prepared by Hyderabadis representing different states and countries. Food courts featuring Telangana cuisine along with handicraft and handloom stalls will also be part of the event. Well, you want to go to Hyderabad now, I guess?
Ji, Delhi.
No,
से,
for the food, for the sweet
बिल्कुल,
festival.
बिल्कुल.
I know you are.
मैं खबरों के बारे
you
में
are in Delhi.
I am in Delhi. जी, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने क्षेत्रों में प्रचार शुरू कर दिया है. पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा ने चुनाव प्रचार किया. इस सीट से भाजपा प्रत्याशी रविन्द्र सिंह नेगी ने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के मयूर विहार और सुप्रीम इनक्लेव में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और क्षेत्रवासियों से मुलाकात की. कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी ने भी विधानसभा क्षेत्र में पूर्वांचल के लोगों से मुलाकात की और वोट देने की अपील की. दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी. दिल्ली चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान के दिन घर से मतदान केंद्र तक पिक एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध कराएगा. चुनाव आयोग ने इस पहल को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं. मुंबई का रुख करते हैं. इस वर्ष 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए देशभर से आमंत्रित कुल 10,000 विशेष अतिथियों में मुंबई क्षेत्र से 5 विशेष अतिथि शामिल हैं. महाराष्ट्र से कुल 23 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है. विशेष अतिथि विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और उनका चयन विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन और सरकारी योजनाओं के प्रभावी उपयोग के आधार पर किया गया है. यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई के बांद्रा टर्मिनस और गोरखपुर के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है. विशेष किराए पर चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन का उद्देश्य यात्रियों को सहूलियत प्रदान करना है. ट्रेन संख्या 05054 बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर हर शनिवार रात 9:20 पर रवाना होगी और सोमवार सुबह 6:45 पर गोरखपुर पहुंचेगी. ये सेवा 15 फरवरी 2025 से शुरू होगी और अगली सूचना तक जारी रहेगी. और कोलकाता का रुख करें तो यहां पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप पर गंगा सागर मेला शुरू हो गया है. मेले में देश और दुनिया से तीर्थयात्री आ रहे हैं. विभिन्न संगठनों ने मेला परिसर और कोलकाता के बाबू घाट के मैदान क्षेत्र में शिविर स्थापित किए हैं. सरकार ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं. मेले में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस इस्कॉन और अन्य संगठन भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पुण्य स्नान 14 जनवरी की सुबह से शुरू होगा जो अगले दिन सुबह तक चलेगा. महानगरों की खबरों के बाद अब बात महानगरों के मौसम की. तो सुभद्रा, कल उम्मीद थी दिल्ली में बारिश की और हुई भी बारिश. आज भी कुछ बादल छाए हुए हैं और दिन में भी हल्के बादल कहीं पर दिख सकते हैं. बूंदाबांदी हो सकती है. अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मुंबई में सुबह हल्का कोहरा रहा और आंशिक बादल यहां पर भी छा सकते हैं. न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 32 डिग्री रह सकता है. और वहीं कोलकाता में आसमान साफ बना रहेगा. आज भी दिन में पारा 24 डिग्री और रात में 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा
रहेगा? चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. द मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्री सेल्सियस. द मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ट. The minimum temperature was 18 degrees Celsius. Maximum will be around 25 degrees Celsius. Hyderabad again expected a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius.
जी, और अब इतिहास के पन्नों से.
Yes, friends, today is National Youth Day, also known as Swami Vivekananda Jayanti. It's a celebration that resonates with the vigor, potential and aspirations of our young population. The birthday of one of our most influential and revered spiritual leaders, Swami Vivekananda. The occasion not only commemorates the birth of this visionary figure, but also serves as a platform to recognize the role and importance of the youth in shaping the nation's future.
Ji. और अन्य घटनाओं की बात करें तो 1708 में आज ही के दिन शाहू जी महाराज को मराठा शासक का ताज पहनाया गया था। 1757 में ब्रिटेन ने पश्चिम बंगाल के बंदेल प्रांत को पुर्तगाल से अपने कब्जे में ले लिया था।
1773, the oldest public museum in the United States was established in colonial Charleston, South Carolina. And 1866, this day, the Royal Aeronautical Society was founded in London. It remains one of the oldest aerospace professional societies in the world. Its mission is to promote the study and practice of aeronautics and to encourage the exchange of information and ideas among its members and the broader aerospace community. And in the year 1879, the British Zulu War began with the British invasion of Zululand, leading to a series of conflicts that culminated in the Battle of Islandswana. And in 1908, a long-distance radio message was sent from the Eiffel Tower for the first time, marking a milestone in communication technology. And in 1926, the two-man comedy series Sam and Henry debuted on Chicago's WGN radio station. 2 years later, after changing its names to Amos and Andy, the show became one of the most popular radio programs in American history. And in 1932, Ophelia Caraway became the first woman to be elected to the U.S. Senate.
जी, और 1934 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन को चटगांव में फांसी दी गई. उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था.
In 1942, one of the wartime efforts that took place was the decision to create a synthetic rubber. This production of rubber was to primarily used for vehicle tires, which would be produced within the next 18 months. They would be produced for military use as well as limited civilian use.
जी, 1950 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 12 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया.
1969, British rock band Led Zeppelin released their self-titled first album, which is now seen as one of the most impressive, important debuts in rock music history.
जी, और भारत का इंडोनेशिया रूस चीन संधि से इनकार, नैफ सदी पर बांध निर्माण योजना के कारण बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर तनाव के बाद सेनाएं तैनात की गई थी और वर्ष था 2001, दिन आज ही का यानी 12 जनवरी.
2005, the US space probe Deep Impact was launched by NASA to study the interior of the comet Temple 1.
जी, और 2009 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत कुमार ने दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड क्रेटर खोजा था. भारत सरकार द्वारा नागर विमानन क्षेत्र पर आतंकी हमलों की आशंका के बीच विमान अपहरण रोधी कानून 1982 में मौत की सजा की धारा जोड़ी गई थी. वर्ष 2010 था और 2018 में इसरो ने लॉन्च किया था सौवा उपग्रह. एक साथ भेजे थे 31 सैटेलाइट. तो इस तरह से इसरो लगातार हर साल नए प्रतिमान, नए आयाम गढ़ रहा है. और अब स्मरण उन विभूतियों का जिनके कार्य और विचार हमें आज भी प्रेरित करते रहते हैं. इस क्रम में सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं प्रखर वक्ता, प्रकांड विद्वान और युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को. एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध समस्त संसार में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान, युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का आज अवतरण दिवस है. नरेंद्रनाथ दत्त अपनी अतुल्य मेधा और अपने आध्यात्मिक तप के चलते स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए. युगांतरकारी आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म को गतिशील और व्यवहारिक बनाया और सुदृढ़ सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिमी विज्ञान और भौतिकवाद को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ने का आग्रह भी किया. कोलकाता के एक कुलीन परिवार में जन्मे नरेंद्रनाथ चिंतन, भक्ति और तार्किकता, भौतिक एवं बौद्धिक श्रेष्ठता के साथ साथ संगीत की प्रतिभा का एक विलक्षण संयोग थे. भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा सुभद्रा ने अभी कहा. आप सभी श्रोताओं को आधुनिक भारत के इस महापुरुष की जयंती और युवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं.
And friends, the kingdom of heaven is like electricity. You don't see it. It is within you. Problems or successes, they all are the results of our own actions. These are the words spoken by the Indian mystic who taught the world transcendental meditation, Maharishi Mahesh Yogi, who was born this day in Allahabad, Prayagraj now of course, in 1917. He founded the science of creative intelligence, and as an exponent of the relaxation technique called transcendental meditation, he became one of the first Eastern mystics to attract a Western following. He first introduced his meditation technique based on a literal interpretation of yoga concepts and the use of mantras to the West in 1958 and founded the spiritual regeneration movement aiming at saving the world through meditation. TM or transcendental meditation, of course, is an easy, natural, scientific technique to achieve the full potential of life. And today we also remember Brajnath Rath, eminent poet of Odia literature and social activist. He was an international figure awarded with numerous national and international awards. His first poem was written to celebrate the spirit of India's independence in 1947.
जी, भारत के घर घर में पूजे जाने वाले पुरुषों में उत्तम भगवान श्री राम के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले टीवी अभिनेता अरुण गोविल का भी आज जन्मदिन है। अपने समय की ख्याति प्राप्त धारावाहिक रामायण में श्री राम की भूमिका निभाने के बाद वे भारत के हर घर में अपनी पहचान बना चुके हैं। रामायण धारावाहिक प्रसारण के दौरान एक बार अरुण गोविल उत्तर प्रदेश के एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी कार रोकी और सड़क के किनारे एक घर में गए जहां एक व्यक्ति अकेला टीवी पर रामायण देख रहा था। वे भी वहीं बैठ गए और रामायण देखने लगे। उस व्यक्ति को अचानक किसी के आने का आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर रामायण देखने लगा, लेकिन सुभद्रा उसने दोबारा देखा और अरुण गोविल का चेहरा देखकर राम से मिलाने लगा। जैसे ही उसने पहचाना, वो तुरंत गांव में भागा और चिल्लाने लगा, मेरे घर भगवान राम आए हैं।
चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, प्रभु के काम आए हैं।
And friends, from Ramayana we go to some fairy tales now. 1628, over to the man who pioneered this fascinating aspect in literature called the fairy tales. I'm sure many of us have been through those beautiful days of fairy tales which our mothers would have read out as bedtime stories, and we thought they were real. Charles Perrault was a poet, storyteller, French writer from Paris, an early member of French Academy, who laid the foundation for a new literary genre, the fairy tale. He combined elements from older folk tales with fantasy depictions of contemporary French society. Perrault's most popular fairy tales were Tales of Mother Goose, Bluebeard, Cinderella, Little Red Riding Hood, Puss in Boots and Sleeping Beauty. And of course, we know that several of his talents have been received multiple adaptations in films, television and theatre. Perrault took birth this day in 1628, passed away at the age of 75 in 1703. Indeed. And friends, producer, singer, songwriter, Maurice Gibb of the pop rock group The Bee Gees passed away this day in 2003. Relying on their top-notch songwriting and impeccable vocals, the Bee Gees were able to craft a long-running career that began in the late 50s in Australia. Along the way, they became a hit-producing pop act in England during the 60s and the biggest disco band in the world in the 1970s with Saturday Night Fever. And also, they also had a late comeback as adult contemporary crooners in the 90s. A song to remember Maurice Gibb, who passed away this day.
के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व की आज पुण्यतिथि है। इनका पूरा नाम है शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली। कुमार गंधर्व कर्नाटक के धारवाड़ में 8 अप्रैल 1924 को जन्मे और पुणे में प्रोफेसर देवधर और अंजनीबाई मालपेकर से संगीत की शिक्षा पाई। 10 वर्ष की उम्र से ही संगीत समारोहों में गाने लगे। उनके चमत्कारिक गायन के कारण ही उनका नाम कुमार गंधर्व पड़ा। कालिदास के बाद कुमार गंधर्व मालवा के सबसे दिव्य सांस्कृतिक विभूति माने जाते हैं। 68 वर्ष की उम्र में 12 जनवरी 1992 में मध्य प्रदेश के देवास में उनका निधन हुआ। लोक संगीत को शास्त्रीय से भी ऊपर ले जाने वाले कुमार गंधर्व ने कबीर को जैसा गाया वैसा कोई नहीं गा सकेगा।
जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर के, मिलना बहुत दुहे।
He was one of those singing cowboys who starred in a string of musical westerns and a recording artist on the C&W charts in the 40s and the 50s. Birth anniversary of country superstar Tex Ritter. Woodward Morris Ritter was his real name, sang cowboy songs, a pioneer of the early country music style. Let his music speak for itself now, friends. A very old folky American classic, Red River Valley.
सुविख्यात संगीत निर्देशक, गायक, फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता यानी फिल्मी दुनिया के बहुमुखी कला के समुच्चय चितलकर रामचंद्र, जिन्हें सी रामचंद्र के नाम से जानते हैं, आज उनकी जयंती है।
Yes, friends, birth anniversary of C. Ramchandra, one of the most talented composers to make music for Hindi films, who was equally comfortable with rag-based songs and Western music idiom. Of course, he was instrumental in giving rhythm an important role in Hindi film music. And his song, the Darwani you're listening to in the background, Sunday Ke Sunday, was probably the first to use swing music in Hindi films. So, Devendra, we were there last Sunday also. We were doing his birth anniversary.
Right.
Sorry, we were doing his death anniversary.
Death anniversary. And, today's birth.
Yes, of course. Yes.
और उन्होंने श्रोताओं संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गंधर्व महाविद्यालय महाराष्ट्र के विनायक बबुआ पटवर्धन से प्राप्त की। बाद में नागपुर के श्रीराम संगीत विद्यालय में शंकर राव से भी संगीत की शिक्षा ली। श्री रामचंद्र की जोड़ी गीतकार राजेंद्र कृष्ण के साथ चर्चित रही। इस जोड़ी की फिल्मों में पतंगा, खजाना, अलबेला, साकी, अनारकली, कवि, तीरंदाज, शतरंज जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म समाधि के सभी गाने उस दौर के हिट रहे। आपके लिए एक गाना प्रस्तुत है। पैदाइश से हिंदुस्तानी और विभाजन की त्रासदी की वजह से पाकिस्तानी उर्दू कवियों में लोकप्रिय अहमद फराज का की आज जयंती है। भारतीय जनमानस ने उन्हें अपूर्व सम्मान दिया। उनकी एक नज्म, उनकी एक गजल पढ़ना चाहूंगा, कुछ शब्द। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। इस जैसी न जाने कितनी बेहतरीन रचनाएं अहमद फराज ने की और जनमानस में बस गए।
And friends, tributes to jazz funk keyboard specialist of the 70s, George Duke, who became a hit machine with a career that lasted 4 decades. Besides keyboard, he sang. He was a band leader, music director for film and television. He first made a name for himself with the album Jean-Luc Ponty Experience with George Duke Trio. A song for him now.
हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायक के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले अभिनेता अमरीश पुरी की आज पुण्यतिथि है। अमरीश पुरी हिंदी फिल्म दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे। पहले चरित्र अभिनेता के रूप में निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई और बाद में खलनायक के रूप में काफी प्रसिद्धि पाई। एक डायलॉग उनका आपको सुनवाते हैं।
नासमझ और जाहिल हिंदुस्तानियों ने अपनी हिस्ट्री अपने इतिहास से आज तक कुछ नहीं सीखा। जब जब वो आपस में लड़े हैं, बाहर से किसी ने आकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, मगर वो आज भी आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने दो, मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, जात के नाम पर। उन्हें आपस में लड़ने के लिए जितने हथियार चाहिए मोगैम्बो देगा।
और इस डायलॉग के साथ ही आपको उनका चेहरा भी याद आया होगा। और अब हम आप सभी से चाहेंगे न्यूज मैगजीन आज सवेरे यही संपन्न करने की आप सभी से अनुमति, लेकिन आप लगातार सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड, क्योंकि यहां पर खबरों और मनोरंजन का सिलसिला लगातार जारी है।
स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नाउ विद समाचार प्रभात, द हिंदी न्यूज बुलेटिन, फॉलो द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार, नमस्कार।